ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एडमिशन पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ ही स्नातक, स्नातकोत्तर, 5 वर्षीय लॉ, बीटेक और पीएचडी तथा एसओएल के दाखिलों का सिलसिला शुरू हो गया है। और दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय ने रोलिंग स्टॉक और ट्रैक मेंटेनेंस के उन्नत स्वचालन सहित मेट्रो रेल से जुड़े विभिन्न अनुसंधान कार्यों में संयुक्त सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 30,000 कोर्ट परिसर में पत्रकारों के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में गिरावट और भ्रष्टाचार के लिए आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार है।
2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए, परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को शुरू करना पड़ा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भी इन केंद्रों का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने घोषणा की है कि अगले वर्ष मार्च तक 8 महीने की अवधि में 1,100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया जाएगा। इस बीच दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पंकज सिंह ने विकासपुरी विधानसभा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण इलाज और सस्ती दवाइयां मिलेंगी।
आप देख सकते हैं कि आयुष्मान अस्पताल में हम प्राथमिक सुविधाएं दे रहे हैं जो आगे चल के लोग के लिए फायदेमंद होगी।
वहीं सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा क्षेत्र जनकपुरी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जनकपुरी विधानसभा में इस तरह के 11 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर शीघ्र खोले जाएंगे। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में आज एक क्रांतिकारी पहल की शुरुआत हुई है।
दिल्ली में जो 1100 आरोग्य मंदिर बनने हैं उसमें से 33 आरोग्य मंदिरों को आज लोकार्पित किया है। जिन आरोग्य मंदिरों में LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल जैसे महंगे टेस्ट भी इन हाउस किए जाएंगे और अनेक तरह की वेलनेस सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं।
इन आयुष्मान मंदिरों में 106 आवश्यक दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त होंगी। 14 इन हाउस और 79 एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ हर सोमवार और गुरुवार को योग सत्र और स्तन, गर्भाशय, प्रोस्टेट सहित 5 प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, आपातकालीन ऑक्सीजन, मातृ शिशु कक्ष और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ये केंद्र सुसज्जित होंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने बाबर रोड में, मंत्री कपिल मिश्रा ने करावल नगर स्थित खजूरी क्षेत्र में, दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने तुगलकाबाद और तिगड़ी में, महापौर राजा इकबाल सिंह ने बल्ली मारान में और समाज कल्याण विभाग मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बवाना में भी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत करने का स्वागत किया है और कहा है कि इसी के साथ भाजपा सरकार ने अपने चुनाव संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता के आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने की कल्पना को पूरा करेंगे। श्री सचदेवा ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक केवल भ्रष्टाचार के केंद्र थे और एक छोटे से हॉल से चलने वाले इन क्लिनिकों में इलाज कम हो पाता था और संक्रमण अधिक फैलता था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली से जुड़े जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री से हुई बातचीत बेहद मार्गदर्शक और आत्मीय रही। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा, संगठन और सुशासन को लेकर श्री शाह का दृष्टिकोण सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने श्री शाह के अमूल्य समय और स्नेह के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा करने वाली कांवड़ शिविर समितियों को आवश्यक अनुमति व उनकी समस्याओं का समाधान सिंगल विंडो सिस्टम से होगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि कांवड़ लेकर दिल्ली आने वाले लाखों शिवभक्तों पर सरकार विशेष ध्यान देगी और सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी।
लाखों शिव भक्त जो दिल्ली में कावड़ लेकर के आते हैं, उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान सरकार उनको पूरी तरीके से सहूलियतें देंगी और वो भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। जो धांधलियां, जो गड़बड़ियां पिछली सरकारों के समय में कावड़ के नाम के सहायता राशि में या उन व्यवस्थाओं में होती थी, पूरी तरीके से वे उसको खत्म करते हुए सरकार काम करेगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने बताया कि अब कुल 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल तैयार हो चुके हैं, जिनमें जल्द ही सेवाएं शुरू हो जाएंगी और सरकार का मल्टी मॉडल नेटवर्क बनाने का सपना भी साकार हो जाएगा।
2021 में करीब दिसंबर के महीने में रिफॉर्म्स किए गए और पूरे प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई किया कि आज इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन के रेडी हो चुके हैं। और आज जिस टर्मिनल में हम लोग हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 45 एकड़ जमीन में बना है और करीब 4.5 लाख कार को यहाँ से कैरी करने की कैपेसिटी है।
श्री वैष्णव ने रेल सुविधाओं में सुधार और साफ सफाई की दिशा में सरकार के उपायों का उल्लेख किया।
11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया है। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया, चाहे स्टेशन को नए तरह के स्टेशन बनाना हो, ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स की व्यवस्था तक नहीं थी, वहां से लाके साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अपनी एडमिशन पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडमिशन पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ ही विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, 5 वर्षीय लॉ, बीटेक और पीएचडी व एसओएल के दाखिलों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने दाखिलों से संबंधित बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी जारी किया। इसके साथ ही 5 वर्षीय एकीकृत लॉ और बीटेक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण के लिए भी पोर्टल की शुरुआत की गई। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला लाया है। इस कड़ी में आज हम सभी के लिए किफायती और स्वास्थ्य सेवा पर जानकारी दे रहे हैं।
पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख पहलों ने लगभग 55 करोड़ लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जबकि आयुष्मान व्यय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को आधुनिक बनाया, जिसके अंतर्गत 78 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वोत्तर में असम में पहले एम्स सहित कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार विकेंद्रीकरण और चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पहला मामला दर्ज होने से पहले हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग से लेकर वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन और तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन लगाने तक त्वरित और साहसिक कदम उठाए। इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से वैक्सीन वितरण सुनिश्चित किया गया। 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई, जबकि ई संजीवनी ने टेली कंसल्टेशन को सक्षम बनाया, जिससे मरीज घर से चिकित्सकों से जुड़े रहे। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य रोलिंग स्टॉक और ट्रैक मेंटेनेंस के उन्नत स्वचालन सहित मेट्रो रेल से जुड़े विभिन्न अनुसंधान कार्यों में संयुक्त रूप से सहयोग करना है। ये समझौता ज्ञापन आज मेट्रो भवन में दिल्ली मेट्रो और मोनाश विश्वविद्यालय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समझौता ज्ञापन से प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से मेट्रो सेवाओं की सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा यात्री अनुभव को अधिक बेहतर करने की अपेक्षा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 4 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2025 शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों में मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देना है। विविध शैक्षणिक विषयों वाले 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 42 संस्थानों के 1400 से अधिक आवेदकों में से 80 छात्रों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है। इस महीने की 21 तारीख को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में आज योग बंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना सहित विभिन्न देशों के मुख्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट UITP ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट 2025 में सम्मानित किया गया है। NCRTC को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लिए सार्वजनिक और शहरी परिवहन रणनीति श्रेणी के अंतर्गत ये सम्मान दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने आज अपर आयुक्त वीर सिंह यादव के साथ पश्चिमी जोन के हस्तसाल वार्ड नंबर 108 का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उप महापौर ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। नई दिल्ली स्थित रूसी हाउस में पहला रूसी भारतीय युवा मंच का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत में रूस के दूतावास तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। ये मंच रूसी और भारतीय युवाओं और विशेषज्ञ समुदायों के बीच विचारों के आदान प्रदान का एक मंच होगा, जो युवा दिवस और भारत रूस के बीच के कूटनीति के 100वीं वर्षगांठ को समर्पित है। बात मौसम की। राजधानी में आज शाम कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं इस बारिश से उत्तम नगर, जनकपुरी रोड, महिपालपुर, वसंत गांव और सुब्रतो पार्क सहित राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बीच बारिश के कारण कई उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ और कुछ उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एडमिशन पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ ही स्नातक, स्नातकोत्तर, 5 वर्षीय लॉ, बीटेक और पीएचडी तथा एसओएल के दाखिलों का सिलसिला शुरू हो गया है। और दिल्ली मेट्रो और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय ने रोलिंग स्टॉक और ट्रैक मेंटेनेंस के उन्नत स्वचालन सहित मेट्रो रेल से जुड़े विभिन्न अनुसंधान कार्यों में संयुक्त सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।